जंगल हमारा दोस्त है,
ह्यूमन बीइंग का,
ह्यूमन बीइंग का, हमारा मतलब ह्यूमन बीइंग का दोस्त है, उसको एक दोस्त की तरह समझो ना, कभी डर नहीं लगेगा। मेरे को जंगल में कभी डर नहीं लगा है। अगर आप पहले से ही दिमाग में रख के जाओ कि जंगल है, वहां पे शेर होता है, यहाँ पे शेर इतने आसानी से नहीं मिलते हैं, ऐसे कोई शेर इज नॉट दैट, कोई भी जानवर, दे आर लेस डेंजरस देन ह्यूमन। हमारी जो काली का माता है, लड़ाई करते वक्त हमारा नहीं वॉर क्राय, कालिका माता की जय। When you say कालिका माता की जय, फिर ना वी गो फॉर चार्ज, इट गिव्स दैट एनर्जी इनटू यू, वो ना अंदर से ना अंदर ताकत आ जाती है, साथ में सिंक्रोनाइजेशन होता है, गॉट दैट। तो जो कालिका माता जो हम जिसको पूजा करते हैं मेरी रेजिमेंट में, वो हमारे अंदर ना संचार जाती है, मतलब इट जस्ट गेट्स इनटू अस व्हेन यू आर इन द लास्ट लड़ाई करते हो।
दोस्तों, कर्नल जोशी एक और मिलिट्री लेजेंड है जो TRS हिंदी पर हमें एक नहीं बल्कि दो ब्लॉकबस्टर एपिसोड्स देने वाले हैं। अगर आपने अक्षरधाम टेंपल इंसिडेंट के बारे में सुना होगा, तो उसमें जिन NSG कमांडोज ने उस सिचुएशन को न्यूट्रलाइज किया, टेररिस्ट को उस सिचुएशन में मारा, उनमें शामिल थे कर्नल तुषार जोशी। पर उस इंसिडेंट को जानने से पहले ये वाले एपिसोड को पूरे तरह से देखिए, अब्सॉर्ब कीजिए, क्योंकि ये होती है भारत के स्पेशल फोर्सेस की ग्रेटनेस, एक बहुत ही बढ़िया स्पेशल फोर्सेस स्पेशल कर्नल जोशी के साथ। एंजॉय कीजिए। कर्नल तुषार जोशी सर, TRS हिंदी में आपका स्वागत है।
कैसे? धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।
आज कैसे हो?
वाह, आज का दिन बिल्कुल फर्स्ट क्लास एंड बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को यहाँ आके।
हम लोग बहुत एक्साइटेड थे कर्नल जोशी को होस्ट करने के लिए, पर बहुत बेसिक सवाल से हम स्टार्ट करेंगे। कर्नल का मतलब क्या होता है? जो सिविलियंस है इस पॉडकास्ट पर बहुत कम कर्नल्स आए हैं, पर कर्नल बनने के बाद क्या होता है लाइफ में?
लाइक कर्नल ये एक आर्मी की रैंक है, और कर्नल का मतलब है जिम्मेदारी, जवाबदारी। ये वो रैंक है जहाँ पर आपको पूरी पावर दी जाती है, जहाँ पर आप अपने ट्रूप्स को कमांड करते हो, उनके वेलफेयर, उनके वेलबीइंग, उनकी ट्रेनिंग, उनकी एवरीथिंग। यू आर लाइक उनके पिताजी की तरह हो आप,
बड़े भैया,
पिताजी, बड़े अच्छा। भाई नहीं, पिताजी अच्छा। मतलब ही हैज टू उसको अपने बच्चों का उन्होंने ध्यान रखना है। सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ हमारे ट्रूप्स नहीं, हमारे ट्रूप्स के जो फैमिलीज है
जी,
वो भी, उनकी भी जिम्मेदारी पापा की होती है। सो कर्नल एक जिम्मेदारी है जो कमांड कर्नल से शुरू होती है।
आपकी आपके टेन्योर की शुरुआत कब हुई थी सर?
कहाँ की टेन्योर?
जब
आर्मी
सर्विसेज की टेन्योर
92 आई जॉइंड एकेडमी, और फिर 93 दिसंबर आई गॉट कमीशन, तब से एंड। और अभी 31 अगस्त 2022 को मैं सुपर एनुएट हुआ।
उसका क्या मतलब है?
सुपर एनुएट मतलब यू आर कंप्लीटिंग योर कंप्लीट कलर सर्विस, यू आर कंप्लीट टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट।
सर, जब हम बाहर थे और जब हमने वो शॉर्ट कॉन्वर्सेशन करी, आपने जंगल और झाड़ियों की बात करी, सबसे मुश्किल जंगल या झाड़ी कौन सी थी?
नागालैंड।
नागालैंड क्यों?
क्योंकि वहाँ पर वो एक इट्स बहुत थिक जंगल है, बहुत थिक जंगल है। सेकेंडली उसमें एक्चुअली रूट्स निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है।
थिक जंगल मतलब क्या?
थिक जंगल मतलब वहाँ पे इट ऑलवेज रेन्स, हमेशा बारिश होती रहती है, जिसके कारण ना वहाँ पे जंगल इतना थिक हो जाता है, काटीले झाड़ियाँ भी होती है, मतलब ऑल जनरल वहाँ पर यू वोंट बिलीव, वहाँ पे प्लांटेन्स है, वहाँ पे वो बनाना के जंगल है, बनाना के जंगल, जंगली बनाना, वो इतने थिक और वो दिखते नहीं है एक्चुअली, उसके बनाने के लीव्स भी बड़े बड़े होते हैं, तो उसमें ना ऑब्स्क्योर हो जाता है, सामने का दिखता ही नहीं है कुछ। और उसके अलावा भी मतलब इतने जंगल है, साथ में उसके लीचेस, लीच होती है ना, वो बड़े तंग करते हैं।
हिंदी में क्या कहते हैं
उसको? जोंक, जोंक, जोंक कहते हैं। वहां पे टाइगर लीचेस होते हैं, होते इतने से येलो एंड ब्लैक बैंड्स होते हैं उस पे, पीने के बाद वो इतने मोटे हो जाते, इतने बड़े और कुछ पता नहीं लगता। वी आर, हम लोग जो कॉम्बैट ड्रेस में होते हैं, एंकलेट्स वगैरह पहनते हैं, वो कहाँ, हम लोग पेट्रोलिंग के लिए जाते हैं तो कहाँ से गिरते हैं, पेड़ से गिरते हैं, कहाँ कहाँ से घुसते। एंड व्हेन यू घर में कमरे में आके अपने जब हम लोग चेंज करते हैं तो देखना सब लटके होते थे,
लटके होते हैं एक साथ
कई जगह, कहाँ से घुस जाते, इतने इतने होते हैं, दे गो इनसाइड और फिर पी के इतने बड़े बड़े हो जाते हैं।
क्या फील होता है? दर्द फील होता है?
नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। जब वो निकालते हैं, और उसको निकालने का भी तरीका है, उसको नमक लगा के निकालते हैं या फिर सिगरेट का ना वो जहाँ पे फ्लेम जो आई मीन जहाँ पर जलता हुआ भाग, उसको थोड़ा पास में हीट से वो छोड़ देता है। खींचना बेकार है, खींचने से वो इट विल पुल आउट योर स्किन ऑल्सो।
ओके,
इसलिए खींचना तो मतलब ही नहीं, वो बस आने के बाद ये हमारी ड्रिल शुरू हो जाती है, नमक डाल, सिगरेट का वो लगा, बट उसको थोड़ा सा पास में लाओ, इस तरह से होता है। एंड उसके बाद खुजली होती है, देन वी पुट सम ऑइंटमेंट वगैरह लगा देते हैं।
वेनम होता है क्या?
नहीं नहीं नहीं, जस्ट इट्स जस्ट नॉट वेनम, बस कुछ नहीं है वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर वो फिर देन फिर थोड़ी सी ऐसी थोड़ी सी इचीनेस हो जाती है, पर हो जाता है, ठीक हो जाता है, पर आदत भी हो जाती है।
उन जंगल में बाकी कौन से एनिमल होते हैं?
स्नेक्स है।
ओके,
स्नेक्स है। इनफैक्ट मैंने तो अपने पोस्ट पे मैंने तो सांप पाल रखे थे। आई एम क्या बोलते हैं इंग्लिश, स्नेक चार्मर बोलो या वो जो बोला है, आई कैन कैच स्नेक्स वेरी इजीली।
ओके, बचपन से वेरी इजीली?
नो नो नो, आई डिडंट नो दैट आई हैव गॉट दिस फ्लेयर। मैं ऐसी एक हमारे पोस्ट पे नागालैंड में ऐसा हुआ था, आई जस्ट हेल्ड इट, मतलब गया पकड़ लिया, जस्ट हेल्ड इट एंड ले गया, एंड माई गाइज वेयर एक्चुअली वो डर रहे थे, तो फिर मैं बोला ठहरो ठहरो मैं आता हूँ, आया जस्ट आई होल्ड। देन मेरे कमांडिंग ऑफिसर थे एक कर्नल बाजवा, उनके पास, ही इज अनदर ग्रेट गाय, मतलब वो भी स्नेक विक में, तो उन्होंने फिर देन ही एक्सप्लेन मी सांप कैसे कैसे पॉइजनस कैसे आइडेंटिफाई करना, सेमी पॉइजनस क्या होता है, ये सब उन्होंने मेरे को वहाँ बताया, बिकॉज उन्होंने देखा ये भी पकड़ने वाला है ये सांप।
कैसे आइडेंटिफाई करते
हैं? एक्चुअली उसके स्केल्स होते हैं, इफ द स्केल्स आर कम्प्लीट इट्स अ फुल्ली पॉइजनस।
ओके, स्केल्स आर कम्प्लीट मतलब?
नहीं, जैसे है ना जब बॉडी है इसकी, तो कई कई के इतने ही होते हैं हाफ, और इसके पूरे होते हैं यहाँ से यहाँ तक।
पर आप हैंडल कैसे करते हो? जैसे कि आपने कहा कि फ्लेयर है आप में फॉर स्नेक हैंडल।
आई डोंट नो, आई डोंट हैव फियर एक्चुअली ना, सांप पकड़ना इतना मुश्किल नहीं है। ये डर है जो लोगों को उसके पास आने से वो होता है। तो उसको तरीके है जो हमको सिखाया जाता है कि वाई स्टिक से उसके इस मुंह के ऊपर ऐसे पकड़ के रखो, सो दैट वो जाए, और फिर जैसे लाठी से उसको पूंछ दबा के रखो जिससे ना हो, फिर उसके बाद पैर रखे, फिर धीरे से उसके मुंह के पास, उसके फन के पास या जो वहां पे ऐसा पकड़ना, और उसका जो अंगूठा होता है उसके हेड के ऊपर, सो दैट इट देन उसको कर दो कुछ, बाकी तो पूंछ वगैरह में बॉडी में कोई जहर थोड़ी है। इट इज दैट, इट्स वेरी सिंपल।
ये मैंने टीवी पे देखा है, पर मैं हमेशा ये सोचता था कि स्नेक ऐसे भी कर सकता है।
नहीं, इसलिए तो यहाँ पकड़ते हैं, होता है थोड़ा सा पीछे पकड़ो, इट विल गो, इट विल टर्न बैक।
उनमें भी पावर होती है?
बहुत होती है। तो है, क्योंकि ना अलग अलग, जैसे जो छोटे हैं वो देखो पावर से ज्यादा उनमें वेनम होता है, वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट।
आपको डसा है कभी?
हाँ, छोटे छोटे स्नेक वो किया था, वो मेरे को जेंट के में काटा था यहाँ पर।
वेनमस?
पता नहीं
मतलब
पता नहीं, छोटा सा था वो, बोला रे जैसे मैंने पकड़ लिया तो उसने डस दिया वो कुछ नहीं, फिर ऐसा थोड़ा सा वो हुआ उसको, फिर वो कर दिया हमने, वो डिटॉल विटॉल लगा के वो कर दिया, बस थोड़ा सा कट कुट कर दिया एंड बस ऐसे ऐसे करके खून निकाल दिया एंड पट्टी वट्टी बांध दी खत्म।
बहुत सारे मिलिट्री वेटरन्स इस पॉडकास्ट पर आए हैं और बहुत सारे लोगों ने कहा है कि कभी कभी इन घने जंगलों में सांप को खाना भी पड़ता है।
That's true. It's, yes. True in a sense, देखिए अभी तो थिंग्स आर बेटर, पहले क्या होता था एक्चुअली, अभी तो हमको राशन विशन सब कुछ मिल जाता है, ये क्या है बेसिकली लिविंग ऑफ द लैंड वाला टेक्निक है। अगर जंगल में आप फंस जाते हो, जिंदा तो रहना है, यू हैव टू सर्वाइव, कैसे जियोगे? तो आप लोगों को पता होना चाहिए क्या क्या खाने वाली चीज़ें हैं। तो स्नेक इज वन ऑफ द दिस थिंग रेप्टाइल जो तुम खा सकते हो।
ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जिसे आप नहीं खा सकते जंगल में।
सबसे पहले रूल है, जंगल का रूल है, एनीथिंग रेड उसको हाथ मत लगाओ, उसको खाओ मत।
जहर होता है?
वी डोंट नो, पर ये बिल्कुल अंडरलाइन करने वाली बात है, जो भी लाल है विच यू डोंट नो अबाउट इट, अगर टमाटर का पेड़ है तो यू विल ईट इट, देयर इज नो प्रॉब्लम। लाल चीज विच यू डोंट नो, नेवर टच इट और नेवर ट्राई टू ईट इट, इट्स नॉट एडिबल।
ओके,
देन उसके बाद फिर मशरूम्स है, मशरूम्स है, देयर मशरूम्स ऑल्सो विच इफ यू नो अबाउट द मशरूम्स देन इट्स ओके, अदरवाइज ऑल मशरूम्स आर अगेन नॉट एडिबल, कुछ मशरूम्स पॉइजनस होते हैं। जे एंड के साइड में एक गुच्छी होता है, गुच्छी यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ, एंड इट्स वेरी कॉस्टली, बहुत महंगा होता है, आई डोंट नो द रेट वगैरह, बट वेरी कॉस्टली। वो गुच्छी तो वहां पर हमारे ऐसे जो पेड़ जो इसमें गिर जाते हैं, मतलब पड़े हुए पेड़ पे तने पे, इट्स अ पैरासाइट, इट्स पैरासाइट, वो भी मशरूम है एक तरह का।
वो इतनी एक्सपेंसिव क्यों है? पर
बिकॉज इतनी ईजिली मिलती नहीं है, दे हैव टू एक्चुअली कहाँ पहाड़ों में, जे एंड के पहाड़ों में, कुपवाड़ा के उसमें शमशाबाड़ी रेंजेस में, वहाँ पे कहीं मिलता है
जहाँ मिलिट्री एक्चुअली एक्सप्लोर करती है,
वहाँ पे कहीं वो होता है। तो हम लोग पेट्रोल वेट्रोलिंग भी देखते हैं, गुच्छी विच्छी पड़े वाला तो हम ध्यान रख लेते हैं, अच्छा यहाँ है, फिर ऑपरेशन के बाद आते हैं, फिर देन भी आके उसको निकाल के ले आते हैं, उसकी सब्जी बनती है।
उसका टेस्ट कैसा होगा?
ऐसे खाओ तो कुछ लाइक एनी मशरूम,
ओके,
इट्स जस्ट लाइक एनी मशरूम,
कुछ तो अलग होगा क्योंकि इतनी ज्यादा
उसमें वो है, क्या बोलते हैं, विटामिन उसके जो वो दैट इज इम्पोर्टेंट।
ओके ओके,
अभी मैं टोटल नॉन टेकी हूँ, मेरे को अभी ये नहीं विटामिन होगा, प्रोटीन्स है, विटामिन्स है, अभी नॉर्मल भाषा में बोलो तो, बट इट हैज गॉट न्यूट्रिशनल वैल्यू।
सॉरी, मुझे जंगल के बारे में और ज्यादा जानना है सर।
जंगल तो आप पूछो,
पहले तो मैं ये कहूंगा कि बहुत मजा आ रहा है आपसे बात करके, आप बहुत ज्यादा ओपन कॉन्वर्सेशनलिस्ट हो, पर जंगलों के बारे में जेन्युइनली ज्यादा जानना है, जानवरों के बारे में ज्यादा जानना है। आपको कभी शेर दिखे हैं, लेपर्ड दिखे हैं?
नो, लेपर्ड्स दिखते हैं
पास से
दिखते हैं लेपर्ड्स। हाँ, हमने तो पास में, मतलब मैं और मेरा एक कमांडिंग ऑफिसर, एक बार हम जिप्सी में जा रहे थे, तो वी वर कमिंग फ्रॉम टी गार्डन के, वहाँ से आ रहे थे, रास्ते में जंगल में बीच में लेपर्ड बैठा हुआ था, जो मराठी में यहाँ बिप्टा बोल, बिप्टा ऐसे बोलते हैं कुछ, लेपर्ड बिल्कुल, एंड ह्यूज बिप्टा, ह्यूज लेपर्ड।
ये कहाँ था सर?
दैट वॉज इन प्लेस कॉल्ड हाशिमारा, वेस्ट बंगाल। ऐसे तो कई, फिर रानीखेत में आई वॉज पोस्टेड देयर इन रानीखेत इन माई ट्रेनिंग बटालियन, आई वॉज ट्रेनिंग बटालियन कमांडर देयर, तो वहाँ पर मैं था, तो वहाँ पर तो हम लेपर्ड देखने के लिए रात में 12-1 बजे निकलते थे, बोले ऐसे ही रात में ना क्या कर, बोले चलो कार में निकलते थे एंड वी कुड सी लेपर्ड्स दिखते थे।
उनकी अग्रेशन होती है?
नो,
बिल्कुल
यार, सबसे शाय जानवर है, सबसे शाय जानवर है। वो एक्चुअली आते हैं गांव में ना, इसके में इसके लिए शीप, मतलब अपने कैटल के लिए, बिकॉज दे आर इजी प्रे, इसके लिए
वो कुत्तों के
अंदर आ जाते, कुत्तों के कुत्ते।
कोई ऐसा जानवर है जिससे डर लगता था जंगल में?
जंगल हाथी। क्या होता है, हाथी, वी वर इन हाशिमारा, तो वहां पर ना, इट इज इन द सेम बेल्ट, सिलीगुड़ी बेल्ट
जी,
वहाँ पर हाथी बहुत है, एंड दे वो इसमें जाते हैं, क्या, हर्ड्स में जाते हैं, एंड वो उन डर, मतलब ऐसा लगता है तुम दूर रहो ऐसा कुछ नहीं करेगा, बट इफ यू मतलब अननेसेसरली उसको फिंगर करने लगोगे तो इट विल वो पीछे भी भागता है हाथी। सिलीगुड़ी में तो ऐसे केसेस हुए हैं कि हॉस्पिटल में घुसे हैं।
हाँ।
वहाँ पर तो एक हम लोग मूव हो रहे थे, वी आर मूविंग, आर कंप्लीट यूनिट वाज मूविंग, तो एक जगह हम प्लॉन्ग हुए थे, तो वहाँ पर क्या हुआ, हम वहाँ पर इवनिंग टाइम पे वी आर सिटिंग इन द मेस या किसी घर पे, वहाँ पे थे, हल्ला गुल्ला शुरू हो गया, द एलिफेंट हैड कम इनटू द कैंप, अंदर आके उसने हमारे जो किचन कुक हाउस था उसको धक्का मार मार के तोड़ा, अंदर से आटे की बोरी ले गया वो। मतलब इस तरह से होता है, मतलब डर मतलब ऐसा होता है कि है ना, उसको क्या पता। और उसको ज्यादा तुम हॉर्न बजाओ, ये बजाओ, थालियां बजाओ, जो कर उसको डिस्ट्रैक्ट करने को, और पागल सा हो जाता है। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल विद एलिफेंट्स।
सर, जो सिविलियन ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं या जो आम जनता ये पॉडकास्ट सुन रही है, उन्हें ऐसी सब बातें सुनकर ना शायद डर फील हो रहा है। तो जब आप जंगल में एक्चुअली एक्सप्लोर कर रहे हो, माउंटेन्स में एक्सप्लोर कर रहे हो, डर जैसी कोई फीलिंग होती है?
देखो ऐसा है, जंगल एक हमारा दोस्त है। सिंपल, जंगल हमारा दोस्त है,
ह्यूमन बींग का
हमारा मतलब ह्यूमन बींग का दोस्त है। उसको एक दोस्त की तरह समझो ना, कभी डर नहीं लगेगा। मेरे को जंगल में कभी डर नहीं लगा है, एक्चुअली कभी डर नहीं लगा। वहां पर कितना रिसोर्सेस है, दे हेल्प यू आउट, हर चीज में हेल्प करता है। इफ यू नो अबाउट, इफ यू हैव गॉट नॉलेज है उसके बारे में, तो बहुत हेल्प करता है। अगर आप पहले से ही दिमाग में रख के जाओ कि जंगल है, वहां पे शेर होता है, यहाँ पे शेर इतने आसानी से नहीं मिलते हैं। ऐसे कोई शेर इज नॉट दैट कि है ना कहीं भी आसानी से आ गया, ऐसे शेर भी नहीं होते। वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, यू हैव गॉट वाइल्ड बोर्स होते हैं, फिर देन लेपर्ड्स होते हैं, फिर सांप तो है ही, फिर जंगली बिल्ली, फिर इस तरह कैट फैमिलीज के कुछ वो मिलते हैं, एंड मतलब इस तरह के होते हैं विच एक्चुअली दे डोंट हार्म यू। जानवर क्यों हमला करता है? सिंपल, जानवर तब हमला करता है जब उसको लगता है कि उसके ऊपर खतरा है, मतलब उसके लाइफ को थ्रेट है, तब वो हमला करता है। अगर हम सांप अगर सामने से जा रहा है, वो थोड़ी तुमको देख के पलट के तुम्हारे पास आएगा। नो अगर तुमने गलती से उसके, अब गलती हो या जानबूझ के हो, तुमने उसके पैर रख दिया, तो उसके लिए वो खतरा है ना, तो पलट के डस सकता है।
जितना मैं समझता हूँ जंगल के बारे में, आपको बस अवेयरनेस के साथ एक्सप्लोर,
अवेयरनेस के साथ, एंड एक सबसे पहले मैं वही बोल रहा हूँ ना, उसको दोस्त की नजर से देखो, एंड जस्ट एंजॉय। जो ध्यान, बी कॉशियस, क्योंकि रास्ता पगडंडी होती है, छोटा सा फुट ट्रैक होता है, यू हैव टू बी केयरफुल, यू शुड नो अबाउट जंगल। कहीं एंट हिल्स होते हैं, कहीं कुछ होता है, तो देखो वहाँ पर लाइकली सांप हो सकते हैं, बारिश में स्नेक्स बाहर आ सकते हैं, क्योंकि एंट हिल में जनरली सांप रहता है, तो उसमें पानी भरने से सांप बाहर आ जाते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें यू शुड नो, ये सब पता होना चाहिए। और ये तो जंगल जैसा कोई टेरेन नहीं है, सब कुछ मिलता है। पानी, पानी खत्म हो जाए तो कहाँ से मिलेगा? पानी बैम्बू में होता है, नॉर्थ ईस्ट में, नागालैंड में बैम्बू के जंगल है। अरे बैम्बू को यूं काटो, उसको उसके जो नॉट्स होते हैं उसे छेद करो, यू विल गेट वाटर इन इट। हमारे सर्वाइवल के कई जगह ऐसा होता भी है, जो मेरे साथ ऐसी कभी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वाटर कंटेंट होता था, संभाल के यूज करते थे। बट यस, ये लिविंग ऑफ द लैंड में हमको सिखाया जाता है कि बैम्बू को काटो, उसमें पानी होता है, और शुद्ध पानी, प्योर वाटर।
टाइगर्स को लेके प्रोटोकॉल क्या होता है सर? मिलिट्री में क्या बताया जाता है कि अगर सामने एक टाइगर आ गया तो प्रोटोकॉल?
लेट इट गो।
ओके,
लेट इट गो, डोंट डिस्टर्ब। प्रोजेक्ट टाइगर, सेव टाइगर, सिंपल रूल। अगर देखो अगेन, टाइगर ऑल्सो आपके ऊपर हमला नहीं करेगा वो, मैं वही कह रहा हूं। कोई भी जानवर दे आर लेस डेंजरस देन ह्यूमन। अपने फायदे के लिए कभी उसके ऊपर अटैक नहीं करेगा, अनलाइक ह्यूमन। हम अपने फायदे के लिए कुछ ना कुछ, कोई ना कोई होता है, बट नॉट एनिमल्स।
मैं आपसे दो चीजों के बारे में पूछना चाहूंगा। पहले तो एनिमल्स में मेरा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, पॉडकास्ट के थ्रू मैंने बहुत ज्यादा सीखा है अभी एनिमल्स के बारे में। मैंने ये जाना कि चिंपैंजी जो अफ्रीका में होता है, वो थोड़े से क्रेजी एनिमल्स होते हैं, वो अटैक करने आ सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में नहीं है चिंपैंजीज, वो गोरिल्ला से ज्यादा डेंजरस होते हैं। लोगों को लगता है कि गोरिल्ला डेंजरस है, पर चिंपैंजी ज्यादा डेंजरस होते हैं। और चिंपैंजी एनिमल किंगडम के एक ऐसे एनिमल है जो ह्यूमंस के बहुत ज्यादा करीबी कजिन है, मतलब जेनेटिकली हम लोग बहुत ज्यादा सिमिलर होते हैं। फिर
नो, if I know about it, there pigs पिक्सर जैसे झंडे के लिए नहीं, यू कैन जस्ट गूगल इट, इवन आई वाज सरप्राइज्ड, आई डोंट नो,
अच्छा
आई डोंट नो, मतलब ये यू कैन कट दिस थिंग आउट, लेकिन ना ये है,
ओके,
पिग्स जेनेटिकली वी आर, पिग्स आर मोर क्लोजर टू ह्यूमंस
देन चिंपांजी,
चिंपांजी लुक्स के कारण है, क्योंकि वो दो पैर पे खड़ा हो जाता है, ही स्टैंड्स लाइक दिस, ही वॉक्स लाइक दिस, बोला इसलिए, जस्ट यू कैन गूगल इट एंड जस्ट फाइंड इट आउट, यू विल बी सरप्राइज्ड,
आई ठीक है,
यू जस्ट सी इट,
ओके ओके, पर आई टेल यू मैं चिंपांजी की बात है क्यों कर रहा हूं सर, चिंपांजी बेसिकली छोटे होते हैं, मतलब 5 feet से ज्यादा के नहीं होते, छोटे होते हैं तो उनको देख के ऐसा लगता है कि चलो इनमें शायद स्ट्रेंथ होगी नहीं, बट एक्चुअली उनका वेट एक ग्रोन मैन जितना होता है, मतलब मान लो आप 80 किलोज के हो, 80 किलोज इन 4'10" हाइट बहुत डेंस मसल बन जाता है, और उस डेंस मसल की वजह से उनमें स्ट्रेंथ भी आती है, और मान लो अगर आपके पास घर पे कुत्ते हैं और उस कुत्ते को आपने पपी से लेकर अडल्टहुड तक उसका सफ़र देखा है, अडल्टहुड में कुत्तों में भी पावर आ जाता है, एनिमल्स में बहुत पावर होता है, ऐसे कोई एनिमल इंटरेक्शन हुए हैं आपके लाइफ में जहां आपको एनिमल का कुछ पावर फील हुआ है?
भालू,
ओके,
बियर, वी हैड टू किल भालू,
ओके,
वो हमारे एक्चुअली एम्बुश में फंसा हो
है,
एम्बुश में अब एक्चुअली हम नाउ ऑपरेशन में गए थे, तो सरसराहट आई, तो भालू खड़ा हो जाता है, तो वो ऐसा लगा कि कोई इन्फिल्ट्रेटर्स आर अबाउट टू दिस थिंग,
हमने
फायर किया, जे एन के में माउंटेनस में,
भालू बहुत डेंजरस भी होते
हैं, या
बट मतलब एम्बुश के बीच में घुस गया,
नहीं एम्बुश, हम एम्बुश ले करते हैं, कि जो भी रूट्स होते हैं उस पर एम्बुश ले करते हैं, तो वहाँ पर हमको अब रात का समय है, हैं थोड़ी सी चांद होता है या एम्बियंट लाइट होता है, इसमें इतना पता नहीं लगता है, बट वो भी खड़ा होकर चल रहा है तो ऐसा लगता है ना सरसरा झाड़ी में सरसरा, तो एंड और किसी का भी वहाँ से ऑपोजिट साइड से आने का कोई काम नहीं है, वहाँ से समवन इज एंटरिंग, ऐसे झाड़ी धिल रही है तो ऑब्वियसली उस तरफ फायर तो करेंगे
सर, इफ इट्स ओके विथ यू आप ये कहानी थोड़ी सुना सकते हो कि एग्जैक्टली हुआ क्या डिस्क्रिप्टिवली?
छोटा सा इंसिडेंट है ना, कि हम लोग एम्बुश में बैठे थे, तो वहाँ से मेरे जो रात में जनरली हम लोग बैठते हैं तो थोड़ा सा ईयर्स एंड आईज ओपन रहते हैं, तो सरसराहट से आवाज आई एंड दे कुड सी अ हेड एंड जिस थिंग झाड़ी ऐसे हटाते हुए।
हाइट कितनी होती है भालू?
यार हाइट तो 5-5.5 feet,
ओके
5-5.5 feet होगा, बस वहाँ पे फायर कर दिया करके आवाज आई एंड फेल डाउन, तब पता लगा ये और कुछ था, बट वी डिडंट, अब उस वक्त गए नहीं, फिर सवेरे जाके देखा तो भालू मरा पड़ा था, तो ऐसा हुआ था, वी फेल्ट बैड, बट क्या कर सकते, हो गया
क्योंकि आपकी खोज एक्चुअली दूसरे जानवर के लिए थी दूसरे जानवर के बारे में बातें करनी है, थोड़े टाइम में करते हैं उस टॉपिक के बारे में।
दूसरे जानवर की तो कहानी होनी चाहिए।
इतने मजबूत सवाल पूछने के बाद मैं एक फीका सवाल पूछूंगा आपसे, चिल करने के लिए मिलिट्री मैन क्या करते हैं रिलैक्स करने के लिए, मतलब सर्विस के टाइम, मान लो आप ऑपरेशन के लिए गए हो और ऑपरेशन शायद या तो खत्म हुआ है या तो
आए वापस, फर्स्ट क्लास ड्रिंक लगाते हैं, गाने गाते हैं, एंजॉय करते हैं विद ट्रूप्स, सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ तो रियली हैव अ बॉल, दिस हाउ दैट इज अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट,
ओके, फिल्म्स विल्म्स यूट्यूब
फिल्म्स, वी हैव गॉट इनफैक्ट हमारे पास ज्यादा स्टोरीज है फिल्म वालों से ज्यादा,
फेयर। मुझे दो तरह के मिलिट्री वेट्स मिले, एक जिनको फिल्म्स अच्छे लगते हैं, एक जिनको फिल्म्स बुरे लगते हैं, स्पेशली वॉर फिल्म्स, आप कौन से कैटेगरी में हो?
मेरे को वॉर फिल्म्स बिल्कुल अच्छे नहीं लगते।
क्यों?
क्योंकि उसमें जो दिखाया जाता है ना, जो वो हजम नहीं होता।
आप कोई बॉलीवुड फिल्म का रेफरेंस दे सकते हो, जैसे कि बॉर्डर या LOC का?
देखो LOC वॉज क्वाइट अभी नाउ दिस माय परसेप्शन, हाँ सबका अलग अलग हो सकता है, एलओसी में काफी कुछ हद तक ठीक बताया, नहीं कुछ कुछ स्टोरी लाइन्स वगैरह ठीक बताई, ऑफकोर्स थोड़ा मसाला डालना पड़ता है मूवी के लिए, तो उसको छोड़कर
वो जेपी दत्ता वाली फिल्म के बारे में
एलओसी हाँ की थी, बॉर्डर ऑल्सो काफी हद तक मतलब कई चीजें बता देते वो है। अरे कई ऐसे पिक्चर देखे हैं जिसमें रैंक कमांडो बताते हैं और ना वो अलग ही कुछ उनके रैंक्स अलग ही होते हैं, और जो फॉर्म वो क्या वो कहते हैं उसको, शोल्डर टाइटल्स आर डिफरेंट विच डज नॉट गो विथ द कमांडो थिंग,
मतलब अटेंशन टू डिटेल नहीं है,
अटेंशन टू डिटेल नहीं है। मूवी बनाते हैं वो, इट इज लाइक अ डिपिक्शन, बस फौजी दिखाना है तो हरी वर्दी, कुछ भी लैंड यार्ड पहना दो, कुछ भी अपने शोल्डर टाइटल्स लगा दो एंड कैरी ऑन, और जितने भर के तमगे पूरे लगवा दो, इट इज नॉट दैट, इट इज नॉट दैट, थोड़ी सी रियलिटी, थोड़ी रियलिस्टिक होना चाहिए। मतलब प्रहार मूवी इट वॉज जस्ट 80-85-90% आई कैन से वॉज क्लोज टू रियलिटी। You know, Mr. Nana Patekar, I think he had gone to Belgaum and trained himself and then did it.
Wo sabse best Hindi film hai, army related. Okay. Jo aapne kaha ki reality nahi dikhai jati hai, aap us reality ko highlight kar sakte sir?
Reality matlab, I am talking of jo army ko jis tarah depict karna hai, waise nahi, army ko depict karne wala army just not green uniform aur kuch bhi pehna do, usko commando bol do, nahi. या फिर कमांडो बना दो उसको, ये कर दो एंड इट, यस कमांडो, देखो कमांडो इज एन एटीट्यूड, उसको जरूरी नहीं है बल्कि होना चाहिए, ह्यूज होना चाहिए, गंजे बाल होना चाहिए, नो, कमांडो इज एन एटीट्यूड अंदर से, जो एक्टर्स भी एक्ट कर रहे होते हैं ना, दे शुड हैव दैट, दे शुड एक्ट विद दैट एटीट्यूड, तब वो निकल के आएगा। लाइक प्रहार में कुछ भी नहीं था, ही वॉज नॉर्मल इन शर्ट पैंट में होता था, यू डोंट रिक्वायर ए यूनिफॉर्म देयर टू डिपेक्ट हिम एज अ कमांडो, इसके एटीट्यूड से निकलता, तो कमांडो इज एन एटीट्यूड।
सॉरी मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ, पर मैंने देखा कि बहुत सारे मिलिट्री वेट्स को उरी अच्छी नहीं लगी थी, उरी फिल्म, क्यों? क्योंकि विकी कौशल का करियर उस मूवी से बना, और विकी कौशल को ऑन फेस वैल्यू देख के ऐसा लग, मतलब आम जनता को लगेगा कि ही कुड बी अ कमांडो, आपने देखी है उरी एंड आपको नहीं लगा कि उन्होंने,
देखो उरी मूवी, देखो एवरी मूवी जितनी आर्मी की मूवीज बनी है इट हैज गॉट सम स्टोरी बिहाइंड
जी,
लाइक एलओसी बनी, बॉर्डर बनी 71 वॉर पे, ऐसे अलग ये बनी वो उड़ी का जो एक्शन हुआ, मुझे नाउ ये मेरा अगेन मेरा परसेप्शन, मेरे को उड़ी इसलिए पसंद नहीं आई क्योंकि अगेन उसमें मसाला ज़्यादा डाला था वो मूवी, अभी ना देर वर नॉट मेनी रियल थिंग्स विच वे शोन, रियल तो दिखाएंगे नहीं बट कुछ डिपिक्शन भी ठीक नहीं था, रियलिटी की जो डिपिक्शन होनी चाहिए
जी
वो भी ठीक नहीं था। चॉपर कहाँ से चॉपर, तो there are so many things which actually I cannot say here,
okay,
but the देखो एक reality होती है, real चीजें तो आप कई जगह दिखा नहीं सकते हो, but reality की जो depiction है वो तो तुम कर सकते हो।
then शेरशाह देखी आपने?
हाँ again I like that movie,
क्यों?
एक तो इट वॉज क्वाइट क्लोज टू माई हार्ट है ना, दैट पर्सन एंड
कारगिल की वजह से,
कारगिल की वजह से वी हैड सीन दैट गाय, चलो अगेन दैट मूवी अभी नाउ वहाँ ऑपरेशन में एक्चुअली वहाँ पे क्या हुआ, हाउ कैप्टन बत्रा फॉट देयर, मतलब जो मूवी में दिखाया है उससे और जबरदस्त हुआ होगा, इट इज जस्ट इमेजिनेशन ऑफ राइटर कि उसने क्या सोचा होगा, या उसके डैड से जो डैड उनके डैड मिस्टर बत्रा है उनसे कुछ फीडबैक लिया, उनके यूनिट से कुछ फीडबैक लिया होगा, तो इस तरह से जोड़ जाड़ के उन्होंने काफी हद तक वो बताया। नाउ आई कांट से कि ना अभी नो वन कैन से कि ऐसा ही हुआ होगा. इससे भी ज्यादा उसने हीरोइज्म किया होगा उसने.
आप उनसे मिले थे कैप्टन बत्रा? नहीं. ओके सर, आपका सर्विस 93 में स्टार्ट हुआ.
या
इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग, आपको कारगिल वॉर याद है? मतलब जब आपने पहली बार सुना कि ऐसा कुछ हो रहा है एलओसी पे, आप उस फेज के बारे में थोड़ा बता सकते
हैं? नाउ फर्स्टली आई जस्ट वांट टू टेल कि कारगिल वॉर में आई डिडंट टेक पार्ट. मतलब तब वी वेर इन नॉर्थ ईस्ट साइड में थे, तो ऑल दोस यूनिट्स एंड जो भी हम फौज जो नॉर्थ की तरफ थी, दे वर पुल्ड देयर.
जी,
है ना, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट भी तो संभालना है ना, तो वी कांट कीप आवर फ्रंट्स ओपन. We can't keep that. हम लोग तो we didn't move out from there. We moved, but we were told to halt there. कि it was just move के ना अगर ज़रूरत पड़ी तो types, but we were not moved. तो I was not there. However, I was following. मैं उसको follow कर रहा था. In fact, उसके एक एक paper की cutting रोज की मेरे पास है.
एक फौजी के दिल में क्या होता है ऐसे situation में? क्योंकि मुझे definitely ये पता है कि हर फौजी के दिल में अग्रेशन होती है और वो होनी ही चाहिए.
व्हेन सबसे पहले कैप्टन कालिया का जो हमने सुना था, उसके हिज आईज वेर गॉज्ड, मुंह काट दिया, नाक काट दिया, ये वो, तब ना इट वाज अ, तब तो मतलब दैट क्या कहते हैं उसको, अभी मेरे को पूछो ना तो मतलब ऐसा लग रहा था कि कब हाथ आए और कब मारूं मैं उनको. मतलब इससे मैं ही नहीं, एनी फौजी ऑफ इंडियन आर्मी. वो पहले जो हमारे 6 का पेट्रोल गया था एंड उसमें ऑफिसर और उसके गया, और उसको ढूंढने के लिए एक और ऑफिसर गया था, आई थिंक नाम मैं भूल रहा हूँ, वो गया. फिर उसने उनकी बॉडी कहीं देखी, वो मतलब हालत बहुत, तब दैट वाज द स्टार्ट ऑफ कारगिल एक्चुअली.
जी,
जो शेपर्ड ने बताया था एंड देन शेपर्ड के बोलने पर फिर देन दिस पेट्रोल पार्टी वॉज सेंट, दे वर एम्बुश्ड. और फिर जब उन्होंने एक्चुअली जो उन्होंने को पकड़ा, तो देखो अगर पकड़ा तो ही इज अ प्रिजनर ऑफ वॉर पीडब्ल्यू, बट देन पीडब्ल्यू के साथ ऐसे नहीं बर्ताव होता है एज पर कन्वेंशन, जिनेवा कन्वेंशन है, जिनेवा कन्वेंशन के हिसाब से ऐसा नहीं होता है. बट दे, अभी खैर मैं गाली नहीं दे सकता, लेकिन
अब दे इज नॉट
फॉर दिस बास्टर्ड्स ना, दे डिडंट फॉलो दैट. मारने का मत करता था एनीवे.
जिन लोगों का जन्म 99 के बाद हुआ है, उन लोगों को, आपकी डॉटर भी वैसे यहाँ बैठी है, आई थिंक उनका जन्म 99 के बाद,
2001
जिसे कहते
हैं,
जेन जी को क्या जानना चाहिए कारगिल वॉर के बारे में?
कारगिल वॉर के बारे में,
और मैं इसलिए ये पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं ओल्ड वर्ल्ड मीडिया यानी कि न्यूज़ चैनल्स, टेलीविजन, यहाँ तक मूवीज़ को भी ट्रस्ट नहीं करता, पर एक फौजी को ट्रस्ट करता हूँ. एज अ फौजी आप क्या कहना चाहोगे जेन जी को कारगिल वॉर के बारे में? क्योंकि मुझे याद है, मुझे याद है कि हम टीवी पे क्या देखते थे, रिपोर्ट्स आते थे, पूरा देश फॉलो कर रहा था कारगिल वॉर को, पर जेन जी ने शायद अपनी लाइफ में वॉर देखी नहीं है.
जेन जी को मैं यही बोलना चाहता हूँ कि हमारे देश में इतनी ताकत है ना, कोई छू नहीं सकता, किसी की हिम्मत नहीं. इतनी लड़ाइयाँ हो गई, कोई भी लड़ाई हम हारे नहीं है, अच्छी तरह से मारा है उनको, ठीक है. और हम हमेशा है ना एज अ फ्रेंड, हमेशा हमने हाथ आगे बढ़ाया, हमेशा दोस्ती का हाथ पहले हमने बढ़ाया. हम वो नहीं है, हम रिएक्टिव फोर्स है. We don't go for offensive. किसी भी लड़ाई में हम कभी नहीं, हमने इनिशिएट नहीं किया है, हमने हमेशा रिएक्ट किया है, ठीक है. हमेशा हमने दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया है और उसी हाथ को उन्होंने काटा है. हमने ये बोला और फिर हमने उसका जवाब, ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया है कि फिर हमारे एडवर्सरीज की हालत देख ली अभी कैसी है. तो जेंजी को हम यही बोलना चाहता हूँ कि हैव फेथ इन आर दिस थिंग, नथिंग विल गो रॉन्ग जब तक अपनी इंडियन आर्मी मजबूत है, नथिंग विल गो रॉन्ग। ऐसे स्कर्मिशेस, इनफैक्ट कारगिल आई डोंट कॉल इट एज अ वॉर, इट्स अ स्कर्मिश ऑफ लार्जर स्केल।
फर्क क्या होता
है? स्कर्मिश में छोटी छोटी लड़ाई है, वॉर इज फुल फ्लेज्ड। हैड इट बीन अ वॉर, इट वुड हैव बीन ओपन इन ऑल फ्रंट्स। 71 वॉर था,
हाँ जी,
इट वॉज अ वॉर। कारगिल वॉर भी बोलते हैं, यस कुछ फ्रंट्स खुल गए थे, लाइक नेवी भी एक्शन में आ गई थी, एयरफोर्स तो थी एक्शन, मतलब ऑल थ्री सर्विसेज दे वर इन एक्शन, बट अपना ईस्टर्न फ्रंट वॉज शांत। इसमें क्या था, 71 वॉर में तो ऑल थ्री फ्रंट्स वेर ओपन। तो यही मैं बताना चाहता हूँ कि वॉर इज नॉट गुड फॉर एनी कंट्री, पर अगर हुआ तो उसका मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, सिंपल।
स्नो में ऑपरेशंस किए?
हाँ किए।
जिन लोगों ने कभी लाइफ में बर्फ देखी नहीं है, बहुत स्लिपरी होती है, बहुत ज्यादा स्लिपरी होती है, मतलब आप चल भी नहीं सकते। आई एम श्योर कि आपके बूट से थोड़ी मदद तो हो जाएगी, बट
देखो ऐसा होता है, अगेन स्नो का मैं बता दूं, जब स्नो पड़ी रहती है, फ्रेश स्नो होती है, तब देन इट इज नॉट डिफिकल्ट, स्लिप वगैरह नहीं होते, पर यस थोड़ा ट्रजिंग करना पड़ता है, धीरे धीरे ऐसा करना पड़ता है, क्योंकि हम जहाँ पे थे वहाँ 10-10, 12-12 फुट बर्फ पड़ती थी, तो वी हैव टू बोला तब पाँव उठा के जालने में थोड़ा टाइम लगता है, पर जब वो हवा विंड फैक्टर से, जब विंड के कारण जब वो ऊपर का हार्ड हो जाता है, देन इट इज़ डिफिकल्ट, मतलब चलना स्लिप होता है। देन वी हैव गॉट दोज प्रोडक्ट्स होते हैं, खोद खोद के हम तोड़ते तोड़ते, या इसको सॉफ्ट करके ऊपर का क्रस्ट तोड़ के ऐसे चलते हैं। शूज़ वगैरह होते हैं कुछ विथ स्पाइक्स, तो वो होते हैं, तो इस तरह से अलग अलग। और बीटन पाथ होता है तो उसके ऊपर हम उसी को ही यूज़ करते हैं, अननेसरली वी डोंट वेंचर लेफ्ट राइट।
और ठंड?
ठंड तो बट वी आर इक्विप्ड, ऐसा तो कोई प्रॉब्लम, ठंड तो होती है स्नो में, ठंड होती है बिकॉज ऑफ विंड, अदरवाइज ऐसे स्नोफॉल होता है। इनफैक्ट जब स्नोफॉल होता है तो गर्मी होती है, पसीना आने लगता है
धूप की वजह से,
पसीना आने लगता है। You will see, ना पसीना, हम वैसे कोट काट पहनते हैं और उसके बाद ना पसीना आने लगता है, if you see.
यानी कि इसका लॉजिक ये है कि धूप बर्फ पे पड़ती है और फिर रिफ्लेक्ट होती है आप पे।
एक तो वो है, नहीं वैसी दैट वो हो जाता है, क्या बोलते हैं, सल्ट्री टाइप हो जाता है, मतलब
इट इज
लाइक बादल बहुत हो जाते हैं और बारिश नहीं हो रही है, तो कैसा है दैट सल्ट्री फील, उस टाइप का कुछ होता है, एंड बड़ा पसीना भी आता है उसमें। बट जब हवा चलने लगती है, जब बर्फ के ऊपर से हवा चलने लगती है, देन विंड फैक्टर जो होता है वो ठंडा होती है।
सबसे ज्यादा ठंड लाइफ में कब फील हुई है सर?
वही व्हेन जब ऊपर थे, जेएनके में थे, तब टेम्परेचर गोज डाउन टू -10, -15, बहुत लो हो जाता है टेम्परेचर वहां पर।
क्या फील होता है -15 पे?
कुछ भी फील नहीं होता, लाइक सिंपल यू आर सब कुछ पहना हुआ है, थर्मल्स पहने हुए हैं, ऊपर से जैकेट पहना हुआ है, ऊपर से हमारे पास जैकेट्स होते हैं, आर्मी इज दैट वे क्वाइट वेल इक्विप्ड, सब कुछ होता है, तो वो जीरो हो या -15 हो कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना। और वहां पे रहते रहते बेसिकली हाई अल्टीट्यूड में क्या होता है, प्रॉब्लम इज ऑफ ऑक्सीजन, पर बॉडी भी तो एक्लेमेटाइज हो जाती है, इतने दिन रह रहकर बॉडी एक्लेमेटाइज हो जाती है, योर हार्ट वर्क्स ऑन दैट, थोड़े से ऑक्सीजन में काम हो जाता है तो बॉडी एक्लेमेटाइज हो जाती है।
ये जो ऑक्सीजन फैक्टर के बारे में आपने बात करी, बहुत कम लोग समझते हैं कि कम ऑक्सीजन की वजह से क्या होता है। कुछ लोग लद्दाख गए हैं, वो थोड़ा सा ऑल्टीट्यूड सिकनेस फील होता है, पर एक्चुअली अगर ऑक्सीजन, अगर हवा पतली हो गई तो हैलूसिनेशंस भी हो सकते हैं, जैसे कि मुन्ना भाई में दिखाया गया केमिकल लोचा,
दिस थिंग एलिमेंट कॉल्ड हैपो, हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी ओडेमा,
जहां आपके बॉडी में शायद पानी,
ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है बिकॉज ऑफ हाई एल्टीट्यूड, हैवी ब्रीदिंगनेसलेस हो जाती है, हैवी ब्रीदिंग हो जाती है, तो दैट इज, और उसमें फिर हैलुसिनेशन वगैरह ये सब कुछ होता है।
आपके साथ हुआ?
नहीं।
आपके साथ कभी भी ऐसी हैलुसिनेशन वाली एक्सपीरियंस हुई है ऑपरेशंस में?
नहीं।
ओके
नहीं,
ये मैं हर पॉडकास्ट में पूछने लगा हूँ, इसलिए पूछ रहा
हूँ। नहीं, मतलब नहीं हुई है। एक देखो सिंपल, देखो इफ यू आर फिजिकली फिट, if you have done your acclimatization. Acclimatization is a very important part in when we go posted that side. Acclimatization dhang se karo. Your body gets body gets suitable for that particular depleted oxygen, thand wagaire na. Usse tumhari body set ho jati hai. If your basic cheeze hai, fauj ki simple cheeze hai, if you follow that, kabhi problem nahi aati hai. वो तब जब शॉर्टकट मारते हैं ना तब प्रॉब्लम आती है. यू गो रेगुलरली मेडिकल के लिए जाओ, बोले मेडिकल के जाते हैं, नहीं मेरे को क्या हुआ है, नहीं यू डोंट नो इनसाइड क्या हो रहा है. तो जो फौज का हुक्म है, जो जो सिस्टम बनाया, कुछ सोच समझ के बनाया हमारे बड़े बुजुर्गों ने, हैं तो फॉलो दैट. मेडिकल हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कुछ सोच समझ के, एक्सपीरियंस या जो भी है, उन्होंने कुछ बनाया है, कुछ SOPs बनाई है, जस्ट फॉलो करो उसको, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती. अब डेली के मॉर्निंग फिजिकल वहाँ के हिसाब से जितने फिजिकल करना है उतना करो, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी लाइफ. इसलिए मेरे को इसलिए नहीं. और दूसरा मेंटली स्ट्रांग रहो. आधे टाइम पे अगर सोचोगे ना थला मेरे को ये हो रहा है, मेरे को कुछ हो रहा है, मेरे को कुछ हो रहा है, मेरे को कुछ हो रहा है, तो थला यू स्टार्ट फीलिंग, वो हेलुसिनेशन वहाँ शुरू हो जाता है. तो बैलेंस रखना है.
आपको कभी भूत या एलियन दिखे?
मैं तो सोच रहा हूँ कोई भूत दिखे. एक्चुअली मेरे को कोई भूत बात कभी तक कोई नहीं दिखा.
विश्वास करते हो भूतों में?
ना
नहीं. कुछ ऐसे अजीब फील हुआ जंगल में, माउंटेन्स में?
नहीं नहीं, जैसे पर एक होता है लाइक मेरे फेलो आर्मी गाइज दे नो, अभी मैं बताऊंगा तो दे विल रिलेट व्हाट आई एम सेइंग. जैसे हमारे वहां पर ना एक पीर बाबा करके होते हैं.
मतलब
कोई बताते, कोई पुराने सेंट्स ने वहाँ पर कोई क्या बोलते हैं उसको, समाधि ली होती है और समथिंग समथिंग सेंट. तो वहाँ पर दे मानते हैं पीर बाबा करके, और एवरी थर्सडे ट्यूसडे वहाँ पर उसके फूल चढ़ाते हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजियस फेथ कुछ बोले, पर वहाँ पर उसको फूल चढ़ाना, चादर चढ़ाना, एंड दैट दे डू. उस वक्त कोई ऐसा मीट नहीं खाना, नॉनवेज नहीं खाना, एंड ऑल दैट ना. तो ये चीजें होती है. तो वी फॉलो व्हाट आवर ट्रूप्स फॉलो, ऑफिसर्स फॉलो व्हाट देयर ट्रूप्स फॉलो एज फार एज दिस फेथ इज कंसर्न. ठीक है, आई एम फ्रॉम कुमाऊं रेजिमेंट. आई कमांडेड माय यूनिट, आई गॉट कमीशन इन 21 कुमाऊं एंड कमांडेड माय ओन यूनिट. तो मेरे जो ट्रूप्स है उनके जो फेथ है वी फॉलो दैट.
जो क्या थी सर, क्या फेथ थी?
लाइक आर ट्रूप्स दे प्रे कालिका माता,
काली माता
है ना, और बजरंग बली ऑल्सो, बिकॉज 50% आर फ्रॉम अहिर, राजस्थान यूपी एंड हरियाणा बेल्ट. तो हम वो भी फॉलो करते हैं, ये भी फॉलो करते हैं. तो वहाँ पर जैसे उस टेरेन में जाते हैं, तो उस टेरेन में जाने वाले जितने भी फौजी हैं दे फॉलो दैट पीर बाबा वाला. ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट इस सिक्किम की तरफ ना एक हरभजन बाबा है. इट इज सेड लाइक हरभजन बाबा एक पुराने फौजी है, आई थिंक फ्रॉम सिख रेजिमेंट, और आई थिंक सिख रेजिमेंट है पंजाब रेजिमेंट और फॉरगेटिंग. एनीवे, तो ही डाइड इन एन ऑपरेशन, पेट्रोल जा रहे थे तब वो स्लिप होके गॉर्ज में गिर गए. इट इज सेट द स्टोरी इज गोज दैट वे कि उसके जो बैचमेट्स थे, वो सिपाही थे, उसके जो बैचमेट था जो ना, जो उनकी सब बॉडी वीडी उनके ढूंढने लगे, पेट्रोल पार्टी कहाँ गई, वो मिला नहीं. ऐसे कहते हैं, आई एम जस्ट टेलिंग यू, जो वहाँ पे वहाँ की बिलीफ है कि वो उनके सपने में आया उसके बैचमेट के. उसने बताया कि मेरी बॉडी फलाने फलाने जगह गई, जगह पड़ी है, उसको उठाओ और इस एक पर्टिकुलर जगह पे, जैसे सिक्किम के आगे एक प्लेस है आगे, तो वहाँ पर आप मेरे समाधि बनाइए और वहाँ पे मेरी पूजा करिए, मेरी बॉडी यहाँ पड़ी है. एंड नेक्स्ट डे उसने बताया होगा कमांडिंग ऑफिसर, दे वेंट डाउन, बॉडी वहाँ मिली, लेके आए और वहाँ पर उनकी समाधि बनाई. एंड हरभजन बाबा, नाउ इट इज़ वे बैक, बहुत पुरानी बात है नाउ, और कहते हैं वो हरभजन बाबा का प्रमोशन भी होता था. इट इज बिलीव वो पर्टिकुलर यूनिट ना उसका प्रमोशन भी होता था, प्रमोशन होता था उसकी, ही यूज टू गो ऑन लीव ऑल्सो, छुट्टी पे भी जाते हैं, उनका वारंट रिजर्वेशन होता था
जी,
उसके साथ उनका एक एक बड़ी का उसके साथ में है वो जाता था। एंड उनकी ये खासियत थी, अगर कोई सेंट्री सेंट्री पोस्ट पे अगर कोई कोई ऐसे डुलकी ले रहा है या सो गया है तो उसको आके थप्पड़ मारता था कि बैठ जगा रहे टाइप ना। और दैट इज व्हाट ट्रूप्स हैव मतलब बताया वहां के ना कि ना यहाँ पे इसने मार खाया उसने मार खाया थे ऐसे कि ना ऐसे ना, वेदर टू बिलीव इट और नॉट तो ऐसा तो कभी हुआ नहीं, मतलब हुआ नहीं मतलब आई कांट से बट ऐसा हुआ भी होगा बट दिस हमने मैंने तो ऐसे नहीं देखा, पर वहाँ की ऐसी कहानियाँ है कि हरभजन बाबा अगर कोई सेंट्री सोता है तो उसको थप्पड़ मारता है खींच के कि आज सो मत ऐसे है ना, जस्ट टू कीप एक तरह आई डोंट नो कि उनको थोड़ा सा वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए ऐसा बोलते हों हो सकता है, बट यस दीज आर द क्या फोकलोर बोलते हैं या क्या कहते हैं मतलब।
सर आपने अभी जस्ट काली माँ की बात करी, थोड़ा अजीब सवाल है बट ये मैं जेन्युइनली सोच रहा हूँ, कभी कॉम्बैट के दौरान आपका दिमाग भगवान की तरफ जाता है या, क्योंकि वन थिंग आई अंडरस्टूड अबाउट कॉम्बैट इज एक फ्लो स्टेट में होता है कॉम्बैट, क्योंकि आपने इतनी ट्रेनिंग कर रखी है वो वेपन भी आपके बॉडी का एक हिस्सा बन चुका है तब तक, तो जो आप वेपन के साथ कर रहे हो एक्चुअली आपके हाथ नहीं कर रहे, आपका दिल और आपका दिमाग कर रहा है, आई वोंट इवन से आपका दिमाग, शायद आपका दिल ही कर रहा है। कॉम्बैट के दौरान भगवान की ओर आपका दिल चले जाता है?
नाउ सबसे पहले मैं उसका बताऊंगा, वेपन वेपन एक्चुअल में इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी, हम जब इसके लिए फील्ड में होते हैं ना हथियार हमारे बगल में होता है, इट हैज टू बी टेकन केयर लाइक योर ओन अर्धांगिनी, मतलब शी इज योर्स, दैट वेपन इज योर्स, और वेपन का तुम जितना ध्यान रखोगे वेपन तुम्हारा उतना ही ध्यान रखेगी, उसकी साफ सफाई मेंटेनेंस ये वो। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट दिस थिंग, जो हमारी जो कालिका माता है ना, लड़ाई करते वक्त हमारा ना एक वॉर क्राय, कालिका माता की जय, व्हेन यू से कालिका माता की जय फिर ना वी गो फॉर चार्ज, इट गिव्स दैट एनर्जी इनटू यू, वो ना अंदर से ना अंदर ताकत आ जाती है, साथ में सिंक्रोनाइजेशन होता है, गॉट दैट। तो जो कालिका माता जो हम जिसको पूजा करते हैं हम मेरी रेजिमेंट में, वो हमारे अंदर ना संचार जाती है, मतलब इट जस्ट गेट्स इनटू अस व्हेन यू आर इन द लास्ट लड़ाई करते हो,
वो ही फ्लो स्टेट या जो
यू कैन व्हाट एवर यू से फ्लो स्टेट और जस्ट से
माता चढ़ गई इन अ पॉजिटिव
दैट एवरीथिंग कम्स इनटू इट, दैट पूरी पावर आ जाती है एंड वेदर बिलीव इट और नॉट बट दैट ना यू गेट दैट एक्स्ट्रा पावर विद दैट शाउट। इसलिए हर एक रेजिमेंट का अपना अपना वॉर क्राय है वेयर दे गो विद दैट स्ट्रेंथ।
काली माँ के बारे में आपने समझा गया है इन एक्सपीरियंसेस के थ्रू, क्योंकि आई एम सॉरी कि आई एम सेइंग दिस पर ये भी इन अ वे थोड़े स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होते हैं, कॉम्बैट एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होता है अकॉर्डिंग टू मी।
नहीं एक्चुअली होता होगा, एक्चुअली देखो ऐसा होता है, व्हाट इज फेथ, किसी एक के ऊपर आपने विश्वास करना, तो हमारे इसमें जैसे कालिका माता है वी हैव फेथ इन हर, कोई भी कहेगा मतलब बस कालिका माता हमारा सब कुछ ठीक करेगी, इट्स जस्ट इट्स अ फेथ एंड फेथ इज द थिंग जो हम सबको बाइंड करती है। नाउ यू आर फ्रॉम माई यूनिट, ही इज फ्रॉम माई यूनिट, ही इज फ्रॉम माई यूनिट, या ऑल ऑफ फ्रॉम माई यूनिट, हमारा कॉमन क्या है, कालिका माँ। गिविंग वन एग्जाम्पल, कोई नहीं बच्चों सब कुछ ठीक होगा, कालिका माता के ऊपर विश्वास दो, कालिका माता की जय, कालिका माता की जय, काला माता की। एंड जो भी ऑपरेशंस के लिए जाते जब भी हम कहीं इसके लिए जाते हैं दैट हम वी हम यलगार करते मतलब दैट विद दैट वी डू आवर यलगार मतलब ना शुरुआत करते हैं हर चीज उस चीज से कालिका माता की जय से हम शुरुआत करते हैं। सो दैट इज द फेथ जो है.
हमने 400 पॉडकास्ट किया, आप वन ऑफ द मोस्ट जॉयस पीपल हो.
आई गॉट हैबिट ऑफ बींग हैप्पी. चल कुछ भी हो, आई विल फाइंड आउट सम रे उसमें ना खुश रहने के लिए. एंड आई टेल एवरीवन, यार खुश रहना सीखो यार. दुखी किस बात का, क्या क्या है, क्या लेके आया था, क्या लेके जाएगा, व्हाट इज देयर, व्हाट इज देयर. अगर ना ठंड लगती है ना, आई ऑल, जब ठंड लगती है और तुमको बोला है यार तेरे पास गर्म पानी नहीं है, ठंडे पानी से नहाना है, बट यू हैव टू टेक बाथ, ओपन योरसेल्फ, लो मग में ठंडा पानी ऊपर डालो, ओह व्हाट अ फ्रेशनिंग, क्या पानी है, फर्स्ट क्लास, बिल्कुल मस्त है, ठंड नहीं लगेगी. अगर वही तुम ना करके ना इसे लो यूं कर रहे हैं, फिर ऐसे डालते हो, यहीं डाल रहे हो पानी, यू नॉट पुट है, डालो ऊपर, माह का क्या एंजॉयिंग, ठंड कम लगेगी, एक्सपीरियंस इट. एकेडमी में हमारे यहाँ एक मसूरी नाइट करके एक सेशन होता था, सीनियर्स हमारे, इट इज ऑन गोइंग, हमारे सेशंस होते हैं, कई पॉडकास्ट में कई लोगों ने बताया होगा सेशंस, आए एकेडमी के सेशंस के बारे में. वहाँ पे एक मसूरी नाइट करके होता था और दिसंबर के महीने में ना देहरादून इज चिल, और ना देर हमारे एकेडमी से ना मसूरी के लाइट्स दिखते थे, मसूरी नाइट बोलते थे. तो ऑल फर्स्ट टॉमस से जो जूनियर टॉमस ना, उनको आते थे बल, दे फाइंड एनी रीजन और नो रीजन टू स्क्रू द जूनियर्स, बेसिकली टू मेक द मेंटली टफ, इट्स पार्ट ऑफ ट्रेनिंग ओनली. तो उसको बोलता ओके लुक गाइस लुक एट द लाइट, वहाँ के अपना पूरे कपड़े निकाले हुए नंगे और वहाँ पे सिंटेक्स टैंक ठंडा पानी पाले, ओके काउंट हाउ मेनी लाइट्स और मग डालते रहो, चिल ठंडा पानी, दिसंबर का महीना, तो ये वो है. तो हमने ऐसे अरे क्या मजा आ रहा है यार, क्या मजा आ रहा है, वो सीनियर को भी छेड़ने के लिए ना, क्या क्या मजा आ रहा है, क्या मजा आ रहा है, हाँ हाँ अच्छा तेरे को मजा आ रहा है, ओके स्टार्ट रोलिंग है. दैट अपने आप ना दैट गेट्स इनटू द ब्लड. तो वो खुश रहने के ना हैप्पी रहने की हैबिट होनी चाहिए. बस वो हैबिट इनकलकेट कर लो, लाइफ में कभी प्रॉब्लम ही नहीं आएगी.
कर्नल जोशी सर, ये इकलौता एपिसोड अभी काफ़ी ज़्यादा हैवी हो चुका है. हर पॉडकास्ट के पहले हम बहुत रिसर्च करते हैं हमारे गेस्ट के ऊपर, और जो मेन बातें आपसे करनी है वो अगले पॉडकास्ट में करेंगे. आई फील कि ऑडियंस मेंबर्स को अगर इस पॉडकास्ट में एंजॉयमेंट फील हुई है तो दे विल बी सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड एट व्हाट दे फील इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट. सो इस एपिसोड के लिए थैंक यू सर, but excited to talk to you about the next one.
Same here.
Thank you, sir. Appreciate it.
My pleasure.
Thank you, sir. Salute you and thank you for your service. Yeah.
Thank you.
तो दोस्तों ये था आज का मिलिट्री स्पेशल एपिसोड. ये एपिसोड थोड़ा सा चिल था, अगला एपिसोड थोड़ा सा इंटेंस होगा. मैं ये डेफिनेटली चाहूँगा कि आप वो सीक्वल एपिसोड अच्छे से देखें, और जब मिलिट्री एपिसोड्स की बात कर रहे हैं तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इन एपिसोड्स को देखना, इन एपिसोड से सीखना और इन एपिसोड्स को शेयर करना मेरे अनुसार हर भारतीय का कर्तव्य होना चाहिए. हमारी मिलिट्री की जो कहानी है, जो माइंडसेट है, जो इंस्पिरेशन उनसे मिलती है और कहीं से नहीं मिल सकती, ये है TRS हिंदी के मिलिट्री एपिसोड्स का कर्तव्य. थैंक यू फॉर लिसनिंग इन. सीक्वल एपिसोड कर्नल जोशी के साथ मिस ना कीजिए.